We had a wonderful memory verse.
और हमारा एक अद्भुत मेमोरी वर्स था इस हफ्ते का.
Says that it is God who is able to keep us from stumbling.
यहाँ लिखा है कि अब परमेश्वर है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है.
That's a very, very, very encouraging thing.
ये एक बहुत ही प्रोत्साहन पूर्ण बात है.
We can depend upon the willingness and ability of Jesus to make us free from stumbling.
हम यीशु मसीह की इच्छा और यीशु मसीह की क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है.
Not on our own ability or cleverness.
हमारे चतुराई पे या हमारी क्षमता पर नहीं.
And it says that he will make us stand in the presence of Jesus blameless.
और वहां लिखा है वो यीशु की उपस्थिति के सामने हमें निर्दोष खड़ा कर सकता है.
I really love that word, blameless.
और मुझे वो शब्द बहुत पसंद है, निर्दोष.
And this can be our ambition also. I want to be blameless.
और ये हमारी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि मुझे निर्दोष होना है.
And the Lord is doing that work in me progressively.
और परमेश्वर बढ़ते क्रम में उस बात को मेरे अंदर कर रहा है.
I may not be blameless now, but my goal is to be blameless.
मैं शायद आज निर्दोष नहीं हूँ, पर मेरा लक्ष्य ये है कि मैं निर्दोष रहूँ.
I mean, every day I'm progressing towards that goal.
और हर दिन उस लक्ष्य के प्रति मैं विकास कर रहा हूँ.
And it also speaks that with a great joy.
और वहाँ ये भी लिखा है कि मगन या बड़े आनंद के साथ.
So what a wonderful possibility that we have in the Lord.
और इसलिए प्रभु में क्या ही अद्भुत संभावना है हमारे पास.
And the Lord's desire is that we every day, every year, as we progress, we go ahead in this goal.
और प्रभु की यही इच्छा है कि हर साल हर दिन जैसे हम प्रगति करते हैं तो इस लक्ष्य में भी हम आगे बढ़े.
During this period, it's good to remember God's faithfulness in our lives.
और इस काल में ये अच्छा है कि हम प्रभु की हमारे जीवन में जो विश्वास योग्यता है उसको हम याद करें.
God is good all the time.
परमेश्वर हर समय सर्वदा अच्छा है.
So let us not forget that.
और आइए हम इसको ना भूले.
And we have every reason to be grateful to him.
और हमारे पास हर वो कारण है कि हम उसके प्रति आभारी रहे.
And we hear this, the best way to express our gratitude Jesus is.
और हम ये भी सुनते हैं कि यीशु के प्रति हमारे धन्यवाद को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है
By our life.
हमारे जीवन के द्वारा.
Our day-to-day life should reflect our thankfulness to Jesus.
हमारा प्रतिदिन का जीवन यीशु के प्रति हमारा जो धन्यवाद है उससे झलकना चाहिए.
It is not just saying thank you Jesus with our lips.
ये केवल हमारे ओठों से धन्यवाद यीशु ही कहना पर्याप्त नहीं है.
But our life should really reveal our gratefulness to him.
पर हमारे जीवन से उसके प्रति हमारा धन्यवाद जो है वो प्रकट होना चाहिए.
Because what we say with our lips, we mean that.
क्योंकि तब हम जो ओठों से कह रहे हैं वो हम वास्तविकता में मन से कह रहे हैं.
I think Jesus will be more delighted when he sees our life, our secret life, Monday to Saturday.
और मैं सोचता हूँ यीशु मसीह ज्यादा प्रसन्न होगा जब वो हमारे जीवन को, हमारे गुप्त जीवन को देखता है सोमवार से लेकर शनिवार तक.
The Lord is a merciful God.
प्रभु एक दया करने वाला प्रभु है.
His mercies are new every morning.
उसकी दया प्रतिदिन नई होती है, हर सुबह नई होती है.
So every day we can be refreshed in the new mercies of God.
और हर दिन परमेश्वर की जो नई दया है उसमें हम तरोताजा हो सकते हैं.
And he is a father of mercies and the God of all comfort.
और वो दया का पिता और सारे सांत्वन का परमेश्वर है.
Like a father, he wants to comfort us.
एक पिता के जैसे वो हमारा सांत्वन करना चाहता है.
So we should never in our life situation never miss the comfort that we can receive from the Lord.
और इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन की किसी भी परिस्थितियों में उस सांत्वन से नहीं चूकना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है.
Even if we have fallen, even there the Lord wants to comfort us. My son, my daughter, I give you hope.
यद्यपि हम गिर चुके हैं वहां भी परमेश्वर हमें आशा देना चाहता है. मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुझे आशा देना चाहता हूँ.
Even if we think entire one year, one more year in my life is over.
और अगर हम पीछे देखें कि एक वर्ष मेरे जीवन का खत्म हो चुका है.
And I did not make much progress as I should have.
और जितना मुझे बढ़ना था, जितनी उन्नति या विकास मुझे करना था, उतना मैंने नहीं किया है.
It's good to make an realistic assessment of our own life.
ये अच्छा है कि हम एक ईमानदार और ईमानदार तौर पर जांच कर देखें कि हमारा जीवन कैसा था.
But we should never ever get discouraged.
पर हमें कभी भी निराश नहीं होना है.
Even then, even in that place, the Lord is willing to encourage us.
उस जगह भी परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि वो हमें प्रोत्साहित करे.
I remember sometime what is written about Gideon in the Old Testament.
मुझे याद है कि पुराने नियम में गिदियन के विषय में क्या.
Gideon was a very timid, fearful person.
गिदियन जो था वो बहुत ही एक डरने वाला, डरपोक ऐसा व्यक्ति था.
And he was threshing some of the grains, hiding behind a mill.
और वो कहीं छिपकर वो जो गेहूं है उसको फटक रहा था.
And an angel came and appeared and encouraged him.
और वहां एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसको प्रोत्साहित करता है.
You may be remembering, you know what? How did that angel sent by God address Gideon, that fearful person?
आपको शायद याद होगा कि उस स्वर्गदूत को जिसने परमेश्वर ने भेजा, उसने गिदोन को किस प्रकार संबोधित किया.
That angel did not say, "Oh, fearful Gideon." That is not what the angel said.
और उस स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा, "Hey, डरपोक गिदोन," ऐसा उसने नहीं कहा.
He said, "Oh, man of valor."
और वो कहता है, "Hey, हिम्मत के पुरुष."
Like a warrior, that was how that angel addressed him.
वो कहता है, "Hey, शूरवीर सूरमा," मतलब तू एक वीर है, उस प्रकार उसका संबोधन किया.
But then he was actually a timid person, a fearful person.
पर वास्तविकता में तो वो बहुत ही डरने वाला एक व्यक्ति था.
So when I read this, how God spoke to me and encouraged me.
और जब मैंने उसको पढ़ा तो इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया.
God knew one day what Gideon was going to be.
परमेश्वर जानता था कि एक दिन गिदोन क्या बनने वाला है.
Now he is a timid, discouraged, fearful man.
आज वो एक डरपोक, बुजदिल व्यक्ति है.
But he was going to be transformed into a man of valor.
पर वो एक दिन एक शूरवीर बनने वाला था, उसमें रूपांतरित होने वाला था.
And a real warrior.
और एक वास्तविक में वो वीर, एक योद्धा बनने वाला था.
The Lord looked into the future, knowing what he was going to be, and addressed him like that.
परमेश्वर ने भविष्य में देखा, ये जानते हुए कि वो क्या बनने वाला है, और उसको उसी प्रकार से संबोधित किया.
So that often has personally encouraged me.
और इसने व्यक्तिगत तौर पर कई बार मुझे प्रोत्साहित किया है.
People may look at our current failures.
लोग शायद हमारे आज के वर्तमान के असफलताओं को देखते हैं.
How miserably we have failed the Lord and our dear ones in many areas.
कितनी बुरी तरीके से हमने प्रभु को निराश किया है और अपने प्रियजनों को निराश किया है कई क्षेत्रों में जहां हम हार चुके हैं.
The Lord will give us hope, reminding us what we are going to be one day.
पर परमेश्वर हमें आशा देगा, ये याद दिलाकर कि एक दिन हम क्या बनने वाले हैं.
I remember once something which C.T. Studd, that great cricketer, said.
और मुझे याद है कि C.T. Studd जो एक महान क्रिकेट खेलने वाले थे, उन्होंने क्या कहा था.
He said, "Only one life."
उन्होंने कहा, एक ही जीवन है.
And that will be soon be passed.
और वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा.
And as years are passing, you know, we are at the end of 2021.
और जैसे साल बीतते जाते हैं, अब हम 2021 के भी अंत में आ चुके हैं.
So we can also remind ourselves, we have only one life.
और हम भी अपने आप को याद दिला सकते हैं कि मेरे पास एक ही जीवन है.
And it will be soon be passed.
और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा.
And what he said is, only what is done for Christ will last.
उन्होंने कहा कि केवल जो मसीह के लिए किया गया है, बस वही रह जाएगा.
So even though he was a well-known global level cricket player.
और यद्यपि वो एक जाने माना, एक विश्व स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी था.
He recognized that only what is done for Christ will last.
उन्होंने ये पहचान लिया कि केवल जो मसीह के लिए किया जाएगा, बस वही रह जाएगा.
The life I that lived for Jesus, that is only what is worth.
जो जीवन मैंने यीशु के लिए जिया है, बस वही किसी मूल्य का है.
And I heard brother Zach little slightly changing it.
और मैंने ये भी सुना कि भाई जैक ने इसी कथन को थोड़ा बदल दिया.
What the Lord has done in us, that is what will last.
जो प्रभु ने हमारे अंदर किया है बस वही टिकेगा, वही रह जाएगा.
So when I am dying, how happy I will be.
और जब मेरी मृत्यु होगी तब मैं कितना खुश रहूंगा.
The lamp of my life has been burned out for Jesus.
मेरे जीवन का जो दीपक है वो पूरी तरीके से जल चुका है यीशु के लिए.
So dear brothers and sisters, this should be our ambition also.
और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही हमारी भी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए.
We should remember, we should never for our earthly life will pass away.
हमें याद रखना है, हमें कभी नहीं भूलना है कि इस पृथ्वी का हमारा जीवन एक दिन खत्म होने वाला है.
And we have only one life.
और हमारे पास एक ही जीवन है.
It should not be wasted away.
वो जीवन ऐसे ही हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है.
It is enough. Maybe all these years we might have wasted.
ये सच होगा कि शायद आज तक के सारे साल हमने ऐसे ही गवा दिए हैं.
But let us not do that anymore.
पर आइए हम इसके आगे ऐसा ना करें.
If we allow Jesus to do a work in us.
अगर हम यीशु मसीह को अनुमति दे कि वो हमारे अंदर एक कार्य करे.
And that is what is going to last.
फिर वही जो वही बात है जो टिकेगी, जो रहेगी.
I remember a passage in Luke chapter 13.
मुझे याद है लूका 13 में एक वचन है.
Jesus telling a man who had planted a vineyard.
और यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने एक बारी को लगाया था.
And in the vineyard he also planted a fig tree.
और उसी के अंदर उसने एक अंजीर के भी खेत को लगाया.
And when the landowner came to look for some figs in the fig tree, he did not find any.
और जब वो मालिक वहां आया उस अंजीर के पेड़ से, वो अंजीर देख रहा था तो उसको कोई भी अंजीर नहीं मिले.
And the landowner said, garden keeper, let us cut this tree and remove it.
और वो बारी के रखवाले को कहता है, आइए हम इस पेड़ को काट दे और इसे निकाल दे.
Why it should waste away the space?
क्यों ये यहाँ जगह खा रहा है ये पेड़?
But the gardener pleaded with the landowner.
पर वो जो माली था वो उस मालिक से विनती करता है.
That is in Luke chapter 13 verse 8.
वो लूका 13 के 8 में है.
Let us allow one more year.
हम एक और साल इसे रहने देंगे.
And I will take the responsibility.
और मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा.
I will dig around this fig tree.
मैं इसके चारों ओर खोदूंगा.
I will water it.
मैं उसे सींचूंगा.
And I will fertilize. I will give fertilizer.
और मैं वहां खाद डालूंगा.
And if it bears fruit next year, it is good.
और यदि आगे को अगले वर्ष फल आता है तो भला है.
If not, let us cut it down.
नहीं तो फिर हम उसे काट देंगे.
We can see how Jesus is interceding for us.
और हम देख सकते हैं कैसे यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करता है.
Giving us more opportunity.
हमारे लिए एक और मौका वो देता है.
And not only that, promising that he will work and continue his work in our lives.
और केवल ये नहीं बल्कि वो वायदा करता है कि वो उसके काम को हमारे जीवन में जारी रखेगा.
Hoping that this fig tree will one day, next year at least, it will give fruit.
ये आशा करते हुए कि ये अंजीर का पेड़ एक दिन कम से कम अगले साल वो फल लाएगा.
So that is very encouraging. God is not one someone who would easily condemn us.
और ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन हमें देता है. परमेश्वर ऐसा कोई नहीं जो हमें आसानी से दंड की आज्ञा देगा या दोषी ठहराएगा.
He is so patient and kind to us.
वो इतना हमारे साथ धीरज रखता है और हमारे साथ वो दयावान है.
Only thing, we should not belittle that kindness and patience of the Lord.
एक ही बात है कि परमेश्वर की जो भलाई और उसका जो धैर्य है उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है, छोटा नहीं समझना है.
So it's good to remember that the Lord is there always on our side.
और ये अच्छा है कि हम निरंतर याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है.
Jesus will never side the devil to accuse us or condemn us.
यीशु मसीह कभी शैतान के ओर नहीं होगा हम पर दंड की आज्ञा लगाने के लिए या हमें दोषी ठहराने के लिए.
When the devil will try to condemn us and discourage us, Jesus will always be on our side opposing him.
जब शैतान ये कोशिश करेगा हमें दंडित करने के लिए, हमें निराश करने के लिए, तो यीशु मसीह हमेशा उसके विरोध खड़ा होगा.
And remember that he is every day pleading, interceding for us.
और ये भी याद रखिए कि वो हर दिन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है।
And this thought was coming to my heart during these weeks.
और इन हफ्तों में ये विचार मेरे मन में आ रहा था।
An interest and eagerness in my own life and also for all of you.
एक मेरे ही जीवन में एक दिलचस्पी और एक चाहत और आप सबके लिए भी।
That taking advantage of all that the Lord is doing in our lives.
और परमेश्वर जो हम सबके जीवन में कर रहा है उन बातों का फायदा उठा के।
As he is watering us and putting us fertilizer and extending our time.
जैसे वो हमें सींच रहा है, हमें खाद दे रहा है और हमारे समय को वो और बढ़ा रहा है।
We should also desire earnestly, Lord, I also want to cooperate with you. I want to bear fruit in my life.
हमारी भी ये लालसा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर का सहयोग करें कि प्रभु मैं अपने जीवन में फल चाहता हूँ।
I don't want to be like a wasteful fig tree which wasted away the farmland.
मैं एक समय गवाने वाले उस अंजीर के पेड़ समान नहीं होना चाहता हूँ जिसने ऐसे ही उस जगह को खा लिया।
So the Lord has put in my heart a sincere desire, Lord, I want to grow in you.
और परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक ईमानदार इच्छा डाली है कि प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ।
As the years are passing, I want to be able to say that I am little ahead than last year.
जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल के तुलना में मैं थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ।
It's good to ask ourselves, where are we now?
ये अच्छा है कि हम अपने आप से प्रश्न करें कि हम अब कहाँ हैं?
Even if slowly, are we making some progress?
धीरे क्यों ना हो, क्या हम थोड़ा भी विकास कर रहे हैं या नहीं?
Are things better than previous years?
क्या बीते वर्षों से अभी बातें बेहतर हैं या नहीं?
And our aim and our desire should be that.
हमारा लक्ष्य, हमारी इच्छा यही होनी चाहिए।
We read in Hebrews chapter 5.
हम इब्रानियों 5 में पढ़ते हैं।
Verse 11 onwards.
11 वचन से आगे।
So this writer is saying that I find it hard to explain.
और वो कहता है कि इन बातों का तुम्हें समझाना कठिन है।
Because you have become dull of hearing.
इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो।
It can happen to us. We get used to the hearing and ears become dull.
ये हमारे साथ भी हो सकता है कि हम बातों को सुनने के इतने आदि हो जाते हैं कि हम ऊंचा सुनने लगते हैं।
We don't value the precious thing the Lord is speaking to us.
जो बहुमूल्य बातें प्रभु हमसे कह रहा है उनको हम मूल्य नहीं देते।
We become like that foolish man who built the house on sand.
हम उस मूर्ख व्यक्ति के समान बनते हैं जिसने अपने घर को बालों पर बनाया है।
We hear, we say it is good, but we don't obey, we don't act upon it.
हम सुनते हैं, हम कहते हैं ये भला है, पर हम आज्ञा नहीं मानते, हम उसके अनुसार कार्य नहीं करते।
The Lord wants us to be that like wise man who built his house on the rock.
प्रभु चाहता है कि हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बने जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया।
When the storm came, rains came, hit against that house, it did not collapse.
जब आंधी आई, तूफान आई, बारिश आया, तो वो घर नहीं गिरा।
So Jesus compared a man who listens to the voice of the Lord and act upon it or obeyed. He is like a wise man.
और प्रभु ने ये तुलना की कि जो प्रभु की आवाज सुनता है और उसके अनुसार करता है या आज्ञा मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है।
It's good to check our own life. How are my ears, is it turned becoming more and more dull?
और इसलिए हमारे जीवन को जांच कर परख कर देखना अच्छा है, मेरे कान कैसे हैं, क्या वो कम सुनने लगे हैं, क्या वो ऊंचा सुनने लगे हैं?
I am hearing, I am also agreeing, saying yes and amen, but I am not obeying.
मैं सुनता हूँ, इन बातों से सहमत भी हूँ, मैं कहता हूँ हाँ आमेन, पर मैं उनकी आज्ञा नहीं मान रहा।
And this writer also challenging them. In verse 12, though by this time you ought to be teachers.
और ये जो लेखक है वो उनको चुनौती भी देता है 12वें वचन में, इब्रानियों 5:12, वो कहता है समय के विचार से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था।
Years are passing, you should have been teaching others by your life.
इतने वर्ष बीत चुके हैं, अब तो तुम्हें दूसरों को अपने जीवन के द्वारा सिखाना चाहिए था।
But still you are in need of someone teaching you very basic thing, kindergarten lessons.
पर अभी भी तुम्हारी जरूरत यह है कि कोई तुम्हें बहुत ही छोटे बालवाड़ी के पाठ वापस से पढ़ाए।
You are still looking for milk.
आप अभी दूध की तलाश में हो।
And you are not able to digest solid food.
और जो भोजन है उसको तुम नहीं उसका पाचन नहीं कर सकते।
think about if we have a little children, if they are like that after some years, will you be happy?
और सोचकर देखिए हमारे जब छोटे बच्चे होते हैं कुछ वर्षों के बाद अगर उनकी अवस्था ऐसी हो तो क्या हम खुश होंगे?
In spiritual sense, what is a milk?
आत्मिक तौर पर दूध क्या है?
Very basic things. Our interest is forgiveness of sins, for example.
बहुत ही प्राथमिक बात है कि हमारी दिलचस्पी केवल पापों की क्षमा में है उदाहरण के तौर पर.
We will be happy when we remember that the Lord is willing to forgive all our trespasses.
हम खुश होते हैं ये सुनकर कि प्रभु हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है.
And we are happy if we hear that the Lord is someone who blesses us.
और हम खुश होते हैं अगर हम ये सुनते हैं कि प्रभु हमें आशीष देना चाहता है.
But beyond that, we have no interest.
पर इसके आगे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है.
We have no interest to overcome sin, for example.
पाप पर विजय पाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है.
You know, the very name of Jesus is that he will deliver his people from their sin.
और हम जानते हैं कि यीशु के नाम का ही अर्थ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा.
We are still fighting and quarreling.
हम अभी भी झगड़ा कर रहे हैं लोगों से.
And we are still envying and having jealousy.
और आज भी अगर हम लोगों से जलन रखते हैं तो.
But little matters, if you get quickly offended even now.
छोटी छोटी बातों से हमें बुरा लगता है अब भी.
We are not even able to take a word of correction, for example.
अगर कोई हमें सुधारता है तो एक सुधार का शब्द भी हम सहन नहीं कर पाते उदाहरण के तौर पर.
We are only happy in hearing words of encouragement and comfort.
हमें केवल प्रोत्साहन और सांत्वन के ही शब्द सुनने में आनंद आता है.
Indeed, we all need words of encouragement.
हाँ, हम सबको प्रोत्साहन के शब्द सुनने की आवश्यकता तो है.
The Lord's dealing itself is first he encourages.
प्रभु का बर्ताव भी हमारे साथ पहले ऐसा ही है कि पहले वो हमें प्रोत्साहित करता है.
And then he corrects.
और फिर वो हमें सुधारता भी है.
So but we should not be happy and content with the words of just encouragement and comfort.
और इसलिए हमें खुश नहीं होना है, तृप्त नहीं होना है केवल प्रोत्साहन और सांत्वन के शब्द सुनके.
We should also grow up having developing the desire to receive words of correction.
हमें आगे बढ़ना भी है अपने जीवन में ये इच्छा ये लालसा रखते हुए कि मैं सुधार के शब्द भी ग्रहण करूं।
I don't want to remain as a baby all through my life.
मैं अपने जीवन भर एक छोटे बच्चे के समान नहीं बनकर रहना चाहता।
We read in verse 13 that everyone who partakes only in milk is not accustomed to words of righteousness.
हम 13 वचन में पढ़ते हैं क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है.
Because he is an infant.
क्योंकि वो एक बालक है, बच्चा है.
So God wants us to make progress in righteousness.
और परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता में उन्नति करें.
And he says solid food is for the mature.
और वो कहता है अन्न सयानों के लिए है.
Only a grown up, an adult only can receive solid food.
केवल एक बड़ा व्यक्ति जो उम्र में बड़ा है वो ही अन्न को ग्रहण कर सकता है.
Because of practice, their senses are trained to discern good and evil.
जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है.
I'm sure we all have the desire to grow to be a mature person.
और मैं निश्चित हूं कि हम सबके अंदर ये इच्छा है कि हम एक मैच्योर व्यक्ति होने की लालसा रखते हैं.
And our desire should be, I want to be ready to receive solid food.
और हम सबकी इच्छा यही होनी चाहिए कि मैं जो अन्न है उसको ग्रहण करने के लायक होना चाहता हूं.
I don't just want to be happy with just drinking milk.
केवल दूध पीने से ही मैं खुश संतुष्ट नहीं होना चाहता.
I was thinking when I read, is there a sorrow and a grief in my heart?
और मैं इसको पढ़ रहा था तो सोच रहा था क्या मेरे हृदय में एक दुख है?
That will indicate my own need.
वो दिखाएगा, वो दर्शाएगा मेरी अपनी जरूरत क्या है?
If I am happy with being an infant, I will never have a sorrow about it.
अगर मैं एक बच्चा होकर ही खुश हूँ, तो कभी मेरे दिल में उसके बारे में दुख नहीं होगा.
If my sincere desire, Lord, I want to make progress, I want to be an adult, I want to be a mature man.
पर अगर मेरी ईमानदार इच्छा ये है कि प्रभु मैं विकास करना चाहता हूँ, मैं प्रौढ़ बनना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ तो.
Then when we get offended and in such a case, we will feel a sorrow and grief in our heart.
फिर जब हमें बुरा लगेगा किसी की बात का या ऐसा कुछ होगा तो हमारे हृदय में एक दुख होगा.
So in the following verses in chapter 6 of Hebrews,
और आगे इब्रानियों 6 के जो वचन है उसमें,
the writer is encouraging and challenging the people of God.
वो लेखक जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर के लोगों को चुनौती देता है.
Leaving the elementary teaching about Christ, let us press on to perfection or maturity.
वो कहता है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता या प्रौढ़ता की ओर आगे बढ़ते जाएं.
This should be our own goal, especially in the coming days. I want to press on to maturity.
विशेषकर आने वाले दिनों में मैं प्रौढ़ता की ओर बढ़ते जाना चाहता हूँ.
I don't want to take it easy.
मैं उसको बातों को आसानी से हल्के में नहीं लेना चाहता.
I am serious about it.
मैं उसके विषय में गंभीर हूँ.
And I want to be radical about it.
और मैं उस विषय में बहुत ही उग्र होना चाहता हूँ.
And I am willing to be inconvenienced for that.
और मैं ये भी चाहत रखता हूँ कि उसके वजह से मुझे असुविधा का सामना करना पड़ा तो भी ठीक है.
I am willing to pay a cost for that.
मैं उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ.
I am willing to deny my own self.
मैं अपने ही स्वयं का इनकार करने के लिए तैयार हूँ.
So I hope God will give us that grace to have that earnestness to press forward to maturity.
मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको ये चाहत देगा कि आगे हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ते जाएं.
And leaving aside the elementary things.
और सारी जो आरंभ की बातें हैं उनको हम पीछे छोड़ दें.
And there is a warning also there.
और वहाँ एक चेतावनी भी है.
Because it is to be taken seriously.
क्योंकि ये गंभीरता से लेने लायक है.
If year after year after year and hearing after hearing we are neglecting is dangerous.
अगर वर्ष प्रति वर्ष प्रति वर्ष और काफी कुछ सुनने के बाद भी हम इन बातों को हल्के में लेते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो वो बहुत खतरे से भरा है.
And we can read that in Hebrews chapter 6 verse 7.
और हम उसको इब्रानियों 6:7 में पढ़ सकते हैं.
A ground that drinks the rain often and falls on it bring forth vegetable useful for the owner. There is a blessing from God.
क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजती है वो परमेश्वर से आशीष पाती है.
But even after receiving all these blessings, all this forgiveness, all this rain water,
पर इन सारे आशीष को इन सारे बारिश के पानी को प्राप्त करने के बाद भी
if the land is giving yielding thorns and thistles,
अगर वो जो भूमि है वो झाड़ी और उटकटारे उगाती होगी तो
it is worthless and close to being cursed.
तो वो भूमि निकम्मी है और श्रापित होने पर है.
So that is a warning so that we need not fall into that pit.
और ये एक चेतावनी है कि हम इस गड्ढे में ना गिरे.
God wants us to protect from landing in such a situation.
परमेश्वर हमें सुरक्षित रखना चाहता है, बचाना चाहता है कि हम इस अवस्था में ना जाएं.
It's not the Lord's desire that a curse happen in our life.
ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि हमारे जीवन पर एक श्राप हो.
So it's a precaution that we can preserve ourselves.
और ये चेतावनी है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं.
And some more encouraging words are written in verse 9.
और आगे भी कुछ प्रोत्साहन के शब्द हैं जो नौवे वचन में लिखे हैं.
After seeing these words of caution or words of caution, we can say, and they are saying, but I am convinced better things concerning you.
और ये चेतावनी के शब्द उनको कहने के बाद वो कहता है यद्यपि ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी बातों का भरोसा रखते हैं.
I am saying this warning, but my desire is not that it will happen to you.
मैं ये चेतावनी तो तुम्हें दे रहा हूँ पर मेरी इच्छा है कि ये तुम्हारे साथ ना हो.
It should not happen to you.
ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए.
Why there is a warning signal at the road so that we don't land up in that danger?
किसी भी रास्ते पर वो चेतावनी देने वाला चिन्ह क्यों होता है ताकि हम कोई खतरे में ना जाए, वो हमारी सुरक्षा के लिए होता है.
In the book of Hebrews, a word frequently happen.
इब्रानियों के पत्री में एक शब्द है जो बार बार आता है.
That is a word better.
वो है बेहतर.
It's a wonderful thing. The Lord has something better kept for us.
और प्रभु के पास हमारे लिए कुछ बेहतर है जो उसने रखा है.
Even here it's written that we are convinced better things concerning you.
और यहाँ भी लिखा है कि हमें इससे अच्छी यानी बेहतर बातों का तुम्हारे विषय में भरोसा है.
The Lord is a good God.
परमेश्वर एक भला परमेश्वर है.
He desires better things to happen in our life.
वो चाहता है कि हमारे जीवन में बेहतर बातें हो.
Not to fall into those dangerous areas.
ये नहीं कि उन खतरे भरो जगहों में हम गिरे.
And the Lord is always encouraging and pushing us towards that better life.
और प्रभु हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है और उस बेहतर जीवन की ओर हमें ढकेलता है.
And he's reminding, God is not unjust so as to forget your work and the work and love which you have done toward his name.
और दसवें वचन में वो कहता है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए उस रीति से दिखाए हैं.
Any little good thing in our life which God has sent us, the Lord has made a note of it.
कोई भी छोटी अच्छी बात हमारे जीवन में प्रभु ने उसे देख कर रखा है.
Even a glass of plain water we have given to somebody, as small as that.
अगर हमने किसी को एक ग्लास पानी भी दिया है इतनी छोटी बात क्यों ना हो.
The Lord will never forget that.
प्रभु उसे कभी नहीं भूलेगा.
And he is speaking what we have ministering to the saints, what we doing to God's people.
और वो कहता है जो हमने संतों की सेवा की है, जो हमने पवित्र लोगों के लिए किया है.
And he is saying that we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance hope until the end.
और वो 11वें वचन में कहता है पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे.
The Lord wants to live a life with the zeal.
परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े झील के साथ उत्साह के साथ अपने जीवन को जिए.
In our life we should not be slack.
हमारे जीवन में हमें आलसी नहीं होना है, ढीला नहीं रहना है.
We should endeavor to live with a great passion and zeal in our heart.
और हमारी यही लालसा होनी चाहिए कि एक बड़े उत्साह के साथ, एक बड़ी इच्छा के साथ हम अपने जीवन को जिए.
And with great zeal in our spirit, that is how we should serve the Lord.
और हमारे आत्मा में एक बड़े उत्साह के साथ हम प्रभु की सेवा करें.
And that is how we can express, Lord, see my life, I'm just trying to express my thankfulness to you.
और ऐसे हम प्रभु को कह सकेंगे कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपके प्रति मैं अपने धन्यवाद को व्यक्त कर रहा हूँ.
And it is not enough to have a good beginning.
और ये पर्याप्त नहीं है कि हमारी शुरुआत अच्छी हो या आरंभ अच्छा हो.
Our end is far more important than our beginning.
हमारा अंत जो है वो हमारे शुरुआत से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है.
Many people have a very good beginning.
कई लोगों की बहुत अच्छी शुरुआत होती है.
They start with the right earnestness.
वे एक सही इच्छा के साथ ईमानदारी से अपने जीवन का आरंभ करते हैं.
In all humility.
पूरी नम्रता के साथ.
Lord is able to support them.
प्रभु उनका उनको आधार दे पाता है.
And the Lord gives grace.
और प्रभु उन्हें अनुग्रह भी देता है.
But down the line they slip and become proud.
पर कहीं आगे जाकर वे फिसल जाते हैं, वे घमंड से भर जाते हैं.
And the end is ruined.
और उनका अंत जो है उसका नाश होता है.
That should not happen to us.
वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए.
Remain in humility till the last day of life is very important.
हमारे जीवन के आखिरी दिन तक नम्रता में बने रहना बहुत जरूरी है.
Because God will withdraw his grace from the proud people.
क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से अपने अनुग्रह को छीन लेता है.
God will resist the proud.
परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है.
But he give grace to the humble.
पर वो नम्रों को अपनी नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है.
And he is saying that you should not be sluggish.
और वो कहता है तुम्हें थकना नहीं है, आलसी नहीं होना है.
Yeah, it's Bible all through the Bible there is strong encouragement to against laziness and sluggishness.
और पूरे बाइबल में आलसी होने के विरुद्ध हमें एक बहुत मजबूत प्रोत्साहन दिया जाता है.
No, sometimes there are very very strong examples.
और कभी कभी बहुत ही मजबूत ऐसे उदाहरण भी हमें दिए गए हैं.
For example, you know, oh, sluggish or lazy man, go to the ant and learn.
जैसे कहीं बाइबल में लिखा है कि हे आलसी व्यक्ति जाकर चींटी से सीख.
So a man like 6 feet man, can he learn from a tiny ant?
और क्या एक 6 फुट का व्यक्ति जाकर एक छोटी चींटी से कुछ सीख सकता है?
So some strong words are used in the Bible, encouraging and promoting diligence.
और ऐसे कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल बाइबल में किया गया है ताकि हम में मेहनत की को प्रोत्साहित किया जाए।
So and we have to work against laziness and sluggishness in our life.
और आलसी होने के विरुद्ध में अपने जीवन में हमें काम करना है।
When it comes to the matter of God, we think we become sloppy and easy and sluggish.
जब बात आती है परमेश्वर के मामलों में, तब हम सुस्त हो जाते हैं, हम आलसी हो जाते हैं।
But in our own personal matters, we are very zealous.
पर अपने व्यक्तिगत कामों में हम बहुत ज्यादा उत्साह दिखाते हैं।
Many people are like that.
कई लोग ऐसे होते हैं।
You can look at our own life. How are we?
हम अपने ही जीवन को देख सकते हैं कि मैं कैसा हूँ।
Jesus, about Jesus is mentioned. My heart is burning about the temple of God.
यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि मेरा हृदय जो है परमेश्वर के मंदिर के लिए बिल्कुल मानो जल रहा है।
Is such a zeal in our heart, such an interest in our own life?
क्या हमारे हृदय में भी ऐसा एक उत्साह है, ऐसी दिलचस्पी है?
Or we are burning about our personal things?
या हम केवल अपने व्यक्तिगत बातों के विषय में ही अपना हमारा हृदय जल रहा है?
So may God really help us to serve the Lord with earnestness.
और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम पूरे हृदय के साथ पूरे सच्चाई से उसकी सेवा करें।
And allow the Holy Spirit work in our lives.
और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमारे जीवन में काम करे।
So that we don't remain as an infant year after year.
कि हम वर्ष प्रति वर्ष एक छोटे बच्चे बालक के समान न बने रहे।
Just want to read one verse and we are closing.
और अंत में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ।
Paul is telling in to Corinthians.
Paulus Corinthians ko keh raha hai.
1 Corinthians chapter 3 verse 1 onwards.
Pehla Corinthians uska teesra adhyay pehle vachan se aage.
Here also Paul is telling, he's expressing, you're like infants in Christ.
Aur yahan bhi Paulus keh raha hai ki tum masih mein chote bal ko saman ho.
So his interest is not to humiliate them.
Aur uski ye koi mansha nahi hai ki wo un logon ka apman kare.
But to ensure secure and undistracted devotion to Christ.
पर इस बात को सुनिश्चित करें कि यीशु मसीह के प्रति उनकी एक सरल भक्ति हो।
Even there he is saying, I gave you milk to drink.
और वहाँ भी वो कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया।
Not solid food.
अन्न नहीं खिलाया।
Only thing I can give is only milk.
मैं तुम्हें केवल दूध ही दे सकता हूँ।
Very basic thing.
बहुत ही मूलभूत छोटी बातें।
You are not able to receive solid food.
तुम अन्न तो स्वीकार ही नहीं कर पाते।
You are not able to take it. You will get offended.
तुम वो नहीं ले पाओगे, तुम्हें तुरंत बुरा लग जाएगा।
So Paul is not able to speak to them some of the necessary things because they knew that they cannot take it.
और पौलुस उनसे कुछ जरूरी बातें भी नहीं कह सकता था क्योंकि पौलुस जानता था कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे।
And he is saying you are still carnal.
और फिर वो कहता है तुम अभी भी शारीरिक हो।
Still there is jealousy and strife among you.
तुम में अब भी डाह और झगड़ा है।
Is there jealousy in us?
क्या हमारे अंदर जलन है?
Yeah, secretly examine our lives. Is there an envy and jealousy against somebody?
क्या गुप्त में ऐसा है, हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, क्या किसी के विरुद्ध हमारे जीवन में हमारे मन में कोई जलन है क्या?
When things are going well with others, do we have jealousy?
जब दूसरों के जीवन में बातें अच्छी चलती है, क्या हमारे मन में जलन है?
So if we just cover it up, we will never get victory.
और अगर हम इन बातों को ऐसे ही ढांप ले तो हमें कभी भी विजय नहीं मिलेगा।
There should be a grief and sorrow when you see that in our own lives. No one can see, we can see.
एक दुख, एक शोक हमारे जीवन में होना चाहिए जब हम इन बातों को अपने आप में देखते हैं। कोई और इन्हें नहीं देख सकता, हम इन बातों को देख सकते हैं।
When we are sincere before the Lord, Holy Spirit help us to overcome.
और जब हम प्रभु के सामने ईमानदार हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है जय पाने में।
Year after year, we need not live a life overcoming by envy and jealousy.
साल प्रति साल हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम जलन और ईर्ष्या से हारा हो।
You can hear now? Okay, yeah. I think indication that my time is over. Yeah, thank you. I really want to encourage dear brothers and sisters.
और मैं सचमुच आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों।
I want to be encouraged seeing looking at the Lord's heart.
मैं प्रभु के हृदय को देखकर प्रोत्साहित होना चाहता हूँ।
He has kept better things for us.
उसने हमारे लिए बेहतर बातें रखी है.
He want to sincerely encourage us and challenge to go towards that.
वो ईमानदारी से हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, चुनौती कर देना चाहता है कि हम उस तरफ चलते जाएं.
May God really help us in our lives.
और परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में हमारी सहायता करे.
We can always look to the Heavenly Father who will continuously encourage us.
हम निरंतर अपने स्वर्गीय पिता को देख सकते हैं जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है.
The Lord will speak truth, but in love.
परमेश्वर हमसे सत्य कहेगा पर प्रेम में.
And when we hear that, that is how we can make progress in our life.
और जब हम उसको सुनेंगे उसी प्रकार हम अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे.
Amen.
Amen.